ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
10 घंटा कुछ सोचने के लिए कहे, क्लिष्ट बातें, सूक्ष्म बातें तो मैं सोच सकता हूँ, मैं दिमाग से चल सकता हूँ, पर शारीरिक मैं अस्वस्थ हूँ, तो कोई बात नहीं, अब हठ योग करके, योग करके, ज्यादा तकलीफ देके आपके शरीर को कष्ट मत दीजिए. बुद्धि दी है भगवान ने, तो बुद्धि से, ज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त करके आप छूट जाइए. तो कोई कहेगा कि भाई मेरी बुद्धि है इतनी सूक्ष्म, चल नहीं सकती है. आप कहे तो मैं योग कर सकता हूँ, मैं आसन कर सकता हूँ और मेरी मन की चंचलता को दूर कर सकता हूँ, तो उसके लिए योग पर्याप्त है. कोई कहेगा कि मैं योग थोड़ा कम कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि जो है, मैं ज्यादा क्लिष्ट और सूक्ष्म बातें सोचना नहीं चाहता. मैं, आप कहेंगे तो प्रणिपात कर सकता हूँ, तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, माला जप मंत्र कर सकता हूँ. आप बोलेंगे उतने तो वो करके भी आप मन शांत. करना क्या है, उद्देश्य क्या है ये सब चीजों का? ये सब चीजों का उद्देश्य है अंतकरण की शुद्धि, मन की, मन का जो चांचल्य है, मन की चंचलता जो है, उद्विग्नता जो है, उसे दूर करना है. यही एक पर्पज है. पठन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्वाणि, भजन्तु देवताः. आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि. ये याद रख लीजिए कि ये सब करने के बाद भी मैं वो परमात्मा हूं, ये अहम अयम अस्मि इति ब्रह्म, वो जो पुरुष है, आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय. अंतिम क्या है ज्ञान? तो बोले ये जो भीतर जो परमात्मा, जो आत्मा है, हृदय गुहा में हृदयस्थ जो परमात्मा है, वो मैं ही हूँ, वो जानना वो अंतिम परिणाम है. और ये जो यजन, पठन, पाठन, तीर्थ यात्रा, दर्शन है, वो क्यों, ये वो व्यवस्था किसके लिए है? ये जानने के लिए मन का जो शांत होना जरूरी है, मन में भगवद आकार वृत्ति का उत्पन्न होना जो जरूरी है, उसके लिए ये सब किया जाता है. कहने का तात्पर्य, आपके संस्कार, आपके आदतों के मुताबिक ये सब साधनाएं करना, ये न कहने प्रकार रहना, आपका मन जिससे शांत हो ऐसे आप शांत कर सकते हैं. अनुकरण मत करना और उसकी ज्यादा बहुत चिंता भी मत करना. उसे प्राप्त करने निकले हैं तो उसे ही उसकी चिंता करने दो. आप चिंता करके अपनी शक्ति का व्यय मत करो. देखिए ये जो संघात दिया है ना, ये लिमिटेड है और ये लिमिटेड से अनलिमिटेड को प्राप्त करना है. ये आंख में जो देखने की शक्ति दी गई है ना, परमात्मा ने आपको पैकेट तो भेज दिया, पर आंख को देखने की जो शक्ति दी गई है वो उतनी ही शक्ति दी गई है जिससे आप परमात्मा को देख सको. परमात्मा को देख सको यानी परमात्मा तो अदृश्य है, आंख का विषय नहीं है, पर आंख से देख के इतना ही निर्णय करना है कि हे परमात्मा, मैं जिसे देख रहा हूँ उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप आप हो, आप नाम आकार के रूप में नहीं हो. इसमें आंख की शक्ति है, उसका सदुपयोग करना है. पर हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड आंख की शक्ति दी है, लिमिटेड कर्ण की शक्ति दी है, लिमिटेड वाणी की शक्ति दी है, लिमिटेड पैर की चलने की शक्ति दी है, पर हम क्या करते हैं, ये सब शक्ति को गलत कर्म में, गलत जगह में, गलत वस्तु में, गलत विषयों में हम डाल के खत्म कर देते हैं. पर ये कोई नेवर एंडिंग ऐसा डायनामो ऐसा नहीं दिया है कि वो रिजनरेट होता जाए. शक्ति गई तो गई, वापस नहीं आएगी, नहीं तो हमको चश्मा नहीं आते. और देखिए आप ऋषि मुनियों को, आप हिमालय में चले जाइए, 100-100 साल का जीवन है और चश्मा क्या, कैटरेक्ट भी नहीं आता है. क्यों, आंख का दुरुपयोग ही नहीं किया है, कान चले ही नहीं जाते. आप और मुझसे और आपसे ज्यादा सुन सकते हैं वो. अच्छा क्यों, क्योंकि गलत सुना ही नहीं दिया है. ऐसी ही वाणी सुनी है जो भगवत का नाम, परमात्मा की, भगवत आकार की वृत्ति उत्पन्न करे, ऐसा ही कान में डाला है शब्द. क्या हम ये कर सकते हैं, ऐसा करो तो ये तप हो गया, ऐसा करो तो और कुछ आसन योग शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी, आप शांत हो जाएंगे अपने आप. हिम्मत है ऐसा करने की? जहां भी प्रपंच गया, जहां भी दूसरी वाणी, नाम और आकार की बात आई और उठकर आप जा सकते हैं बिना शर्म, बिना झिझक, बिना संकोच, तो समझना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ आपने किया. उठ के चले जाइए. शर्माइए मत, उसको प्राप्त करने के लिए संकोच मत कीजिए। यह वाणी से कितना गलत और बिन उपयोगी कितनी वाणी हमने बोल दी। एनर्जी वेस्ट गई तो गई, अभी चली गई। और संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी हम तड़पते हैं सुनने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गलत वाणी बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं की, तो उनके मुख से जो निकलता है वाक तपस हो जाता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाणी ने गलत नहीं बोला, इसलिए जो बोलते हैं वो हो जाता है। तात्पर्य क्या है अब बराबर समझ लीजिए कि हमें क्या सीखना है इससे। जो भी शक्ति आपको दे गई है उसका सदुपयोग करना है। अब पुष्पदंत जी के स्वभाव के मुताबिक उन्हें ये वाणी को थोड़ी रसमयी बना के गीतात्मक रूप में परमात्मा की स्तुति करने का एक मौका मिल गया। देखिए, और एक बात समझ लीजिए कि प्रतिकूल संजोग आ गए तो प्रतिकूल संजोग में परमात्मा उनके श्रवण का, मनन का, चिंतन का, निधिध्यासन का, गान का, भक्ति का मौका दे रहे हैं। ये मौका मत चूकना। मीराबाई को जब ये जहर का कटोरा यहां तक आ गया तो मीराबाई को तो बहुत खुश हो गए। क्यों? मौका मिल गया कि हे परमात्मा, इतनी एकतानता तेरे साथ कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। इतनी एकतानता थी कि वो पिए तब उनके मन में ये विष है उतनी वृत्ति। देखिए, ये विष है ऐसा कहने के लिए वृत्ति होनी चाहिए कि ये विष है। पहले अंतकरण वृत्ति जो है वो तत्त्वत विषयाकार होती है, फिर ही भान होता है कि ये है। अब वो विषयाकार करने के लिए मेरे मन में ओम नमः शिवाय की वृत्ति चल रही है, जहर का कटोरा आ गया तो ओम नमः शिवाय की वृत्ति मेरी क्या होगी? चली जाएगी। और ये विष है ऐसा सोचने के लिए वृत्ति यहां से निकल के यहां जाएगी। अब यहां से निकल के यहां गई, उतनी क्षण के लिए भी उन्होंने परमात्मा का, भगवत का नाम नहीं छोड़ा, तो भगवत आकार वृत्ति ऐसी ही बनी रही। तो हे परमात्मा, मुझे तो खुशी हुई कि ये जहर मिला, क्योंकि ये होने तक ये है ऐसी भी वृत्ति, इतना भी नोटिस नहीं किया। तेरे साथ में ज्यादा हो सकी, ये प्रतिकूलता से आप ज्यादा मिल गए। अब देखिए, कोई भी जीवन में प्रतिकूलता आएगी तो आप परमात्मा का नाम थोड़ा विशेष रूप से लेंगे कि नहीं लेंगे? आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, कुछ सुन लिया कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तूफान आ गया है, कर्फ्यू लग गया है, तो क्या होगा? तुरंत ही परमात्मा का नाम की प्रबलता बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ, प्रतिकूलता में प्रबलता बढ़ जाती है। यानी प्रतिकूलता को क्यों आई, ये प्रतिकूलता कैसे आई, उसमें से कैसे मैं बाहर चली जाऊं, कैसे निकलूं, कैसे छूटूं, ये सोचने के बदले आपकी भगवताकार वृत्ति को एकदम ही पकड़ के प्रकर्षण न मजबूत किए जाइए। तो ये पुष्पदंत जी ने क्या किया, राजा के सामने गिड़गिड़ाना तो बंद ही कर दिया। देखिए, उनके उद्यान से चोरी की है तो भी उन्हें हाथ जोड़ने की जरूर नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हाथ उसे जोड़ने हैं। गलत किसी का किया भी, गलत तो करना नहीं ही है, पर कर ही लिया तो कोई बात नहीं, कोई छोटे बन जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो करनी ही है, नमस्कार तो, माफी तो मांगनी ही है, वो परमात्मा की मांग लेना। तो उन्होंने क्या किया, कोई राजा के साथ की बात कुछ नहीं की, कोई सैनिकों के साथ कुछ मारपीट कुछ नहीं, मन में द्वेष भी नहीं रखा कि मैं पकड़ा गया, निर्माल्य क्यों रखा, अब उसके मुताबिक भी वार्तिक नहीं किया, क्योंकि गंधर्व योनि मनुष्य योनि से ऊपर है, देव गंधर्व योनि भी ऊपर है गंधर्व योनि से, तो ये तो ऊपरी हो गए। तो भी कोई वाद नहीं किया, कोई तर्क, देखिए तर्क से कुछ भी जीता जा सकता है। ये तर्क से काशी नरेश राजा को भी वो असत्य ठहरा सकते थे, उनमें शक्ति थी है। पर ऐसा करने में हमें आपको बताया, जो एनर्जी जो है, जो शक्तियां दी गई है परमात्मा को जानने के लिए, उसका व्यय नहीं करना। ये तर्क आपकी शक्ति को खा जाता है और परमात्मा को नहीं मिलने देता। तो ये जो शक्ति है उनका सदुपयोग उन्होंने मात्र परमात्मा की स्तुति के लिए किया, और वो स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। पहला श्लोक है आपके पास, जिसके पास शिव महिम्न है, कईयों को तो मुखपाटी होगा आप सबको, जिसको नहीं है पुस्तक में आप देख के मेरे साथ ही गान करना। महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणम् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः। ये एक महिमन स्तोत्र ऐसा है जो शिखरिणी वृत्त में ही गाया जाता है। आप कोई अलग कोई राग में गाए तो वो अलग बात है, बाकी इनके लिए शिखरिणी जो वृत्त है, शिखरिणी जो छंद है, उसी में गाने का विधान किया गया है, क्योंकि वो ज्यादा ये मधुर रस जो है, ये मधुर रस में ज्यादा मधुर, ये कहते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर आप टॉपिंग रख देखते हैं, ऐसे मधुर को भी मधुर करते हैं, क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, परमात्मा सब मधुर जितना एकत्र कर लिया, जितना आनंद, जितना श्रेष्ठत्व, जितना सौंदर्य एकत्र कर लिया, उससे भी ज्यादा वो परमात्मा है। उनके महिमा को हम पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए जितना महिमा किया उतना आपके लिए तो कम ही है, क्योंकि मैं जितना आपका वर्णन करूंगा, मैं जितना आपका महिमा का गान करूंगा, उससे आप ज्यादा ही है, इसलिए जितना वर्णन करूं उतना कम है, फिर भी जितना भी करूं उतना पर्याप्त भी है, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूं, आप मधुर से भी ज्यादा मधुर है। तो ये मधुर से भी ज्यादा मधुर स्तोत्र है, उसको और मधुर बनाने के लिए शिखरिणी वृत्त क्यों किया गया, क्योंकि ये गान शिखरिणी छंद में गाने से परमात्मा की आनंद की बात इसमें बन जाती है। तो शिखरिणी वृत्त में 17 जो अक्षर जो बने हैं उसमें 6 को तोड़ देते हैं और बाकी के 11 अलग गाए जाते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ कहा है महिम्न पारमते परम विदुषो यद्र सदृशी। हे परमात्मा, हे महादेव, आपके महिमा की परम सीमा, परम विदुषो, परम सीमा जो है वो न जानते हुए मेरी स्तुति अगर आप उसे अयोग्य कहेंगे, यानी हे परमात्मा, आपका जो महिमा है वो अवर्णनीय है, आपका महिमा आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप ब्रह्म है। और परब्रह्म के बारे में क्या कहा गया है उपनिषदों में? हम भी जानते हैं कि अवांग अमनस अगोचरम, यानी वाणी का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का विषय ये नहीं है, वो बंद हो गए। अच्छा, मन का विषय है तो बोले मन भी उड़ गया, अंतकरण का भी विषय नहीं है वो परमात्मा, बुद्धि का भी विषय नहीं है, और हमारे पास है क्या? वॉट वी हैव टू नो दैट लॉर्ड? ये मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि का संघात है, और ये संघात के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये मैं स्तुति कर सकूं। तो ये संघात की मदद से अगर मैं स्तुति कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो महिमा को पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि शरीर मन बुद्धि के पर की वो महिमा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है। क्यों अयोग्य नहीं है? तो उसकी बात बता रहे हैं कि स्तुति ही ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मादि है वो देव भी, उनकी वाणी भी आपकी स्तुति करने में अयोग्य है। अयोग्य है यानी पहुंच नहीं सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। और यहां ब्रह्मा जी की ही बात क्यों की? ब्रह्मा जी के साथ कुछ उनको तकलीफ हुई थी क्या? तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पर ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा में से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनकी स्तुति को, उनके महिमा को खुद ही उत्पन्न हुए तो भी नहीं जान सकते हैं, उनके कारण है तो भी नहीं जान सकते हैं, उनका कार्य है तो भी नहीं जान सकते हैं, तो मेरी तो बात ही क्या? अगर ब्रह्मा जी नहीं जान सके तो भी उन्होंने स्तुति की है, तो मेरी स्तुति सर्वथा योग्य ही है, स्वीकार्य ही हो सकती है, इसीलिए मैं ये स्तुति करने की कोशिश चेष्टा कर रहा हूं। आगे कहते हैं, अथावाच्य सर्व स्वमति परिणामा वधिगृणन ममाप्येश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। और उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बुद्धि के मर्यादा के मुताबिक स्तुति करने वाले हर कोई अगर निंदा पात्र नहीं है तो मेरा ये स्तोत्र जो है उसका प्रयत्न निर्दोष ही आप समझिए। हे हर, हर याने हरण करने वाले, किसका हरण करने वाले? अज्ञान का हरण करने वाले। तो अगर आप अज्ञान का हरण करने वाले हैं तो मेरी स्तुति में अज्ञान कहाँ से आ गया? भाई शरीर मन और बुद्धि का उपयोग किया ना, यही अज्ञान आ गया। अगर आप जो अगर कहेंगे ना कि भाई ब्रह्म ही है और आप ब्रह्म में ही निष्ठा रखते हैं, ऐसा हम कैसे जाने? जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे सब संत, तब मान लेना कि ब्रह्म में। तो क्या संतों को ब्रह्म में निष्ठा नहीं है? ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सुनने वाले की, वक्ता की, शरणागत की भी निष्ठा हो, इससे बोल रहे हैं। बाकी ब्रह्म को जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता है, एक शब्द नहीं रहता है, ये तो उच्छिष्ट हो गया ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में बोले तो ब्रह्म उच्छिष्ट हो गया। वो उच्छिष्ट कैसे हो सकता है? वो तो परम शुद्ध है, बोला ही नहीं जा सकता। बोलते इसलिए है क्यों? क्योंकि कोई शरणागत है। बोलते इसलिए है क्योंकि बोलने वाला ही सुन के वो नहीं बोलने वाले को प्राप्त हुआ है। किसी का तो उसने प्रवचन सुना है, किसी को तो बोल सुने हैं, कि कोई तो उद्धृत हुआ है उनको बोलने के लिए, और वो सुन सुन के वो परमात्मा के बारे में जान सके हैं, अंतिम विधि तक जान सके हैं, अंतिम अवधि तक पहुंच सके हैं, इसलिए वो फिर से बोलते हैं। ये कष्ट होता है बोलने में, क्यों? क्योंकि एक बार पता लग गया कि वाणी का विषय भी जो नहीं है, जो मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं हो, उसमें बल जबरी बोलना पड़े तो जानना के क्या होता है, फिर भी बोलते हैं। इसीलिए गुरु को, संत को, ये वेद को अकारण दयामय कहते हैं, वो इसीलिए। तो पुष्पजंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा हर, आप हर यानी अज्ञान का हरण करने वाले हैं, मेरी जो स्तुति में कर रहा हूँ उसमें अज्ञान क्या आ गया कि आप वाणी से पर है तो भी वाणी में बोल रहा हूँ, तो ये वाणीगत जो अज्ञान है उसको आप निकाल दीजिए। और जो परम शुद्ध आप रह गए वाणी के बाद, वाणी के बाद कैसे रह गए? तो देखिए, अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये वाणी का उपयोग किया। अब वाणी में से परमात्मा को हर बोल के प्रार्थना क्या करनी है कि इसमें से अज्ञान को निकाल दो, यानी शब्द को निकाल दो और उसकी जो असर है उसमें आप स्थित हो जाओ। ओम नमः शिवाय जब आप बोलेंगे तो असर क्या होगी? ओम बोलेंगे तो असर क्या होगी? तो बोलने के बाद जो शांति है, जो आनंद है, जो शरीर मन बुद्धि की संवेदनाएं हैं वो चली जाती है, प्रारब्धगत सुख दुख जो है वो क्षण के लिए जो दूर हो जाते हैं, और मात्र परमात्मा का जो क्षणिक स्पंदन होता है वो परमात्मा ठहर जाता है, वहां रह जाता है। पर प्रार्थना में वो अज्ञान को निकाल देता है, वाणी को निकाल देता है। तो वाणी को निकालने के बाद तो हे परमात्मा वाणी से बोल रहा हूँ, उसमें वाणी रूप अज्ञान को निकाल दीजिए, और मेरा जो हार्द है, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति जो प्रदर्शित हो रहा है, वो प्रेम को आप पकड़ लीजिए, आप तो वो करने में सक्षम है। देखिए, इतना आप भक्त से किसको बोल सकते हैं? जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप मानते हैं। तो परमात्मा को इतना नितांत अपना पहले मानिए, पहले अपना बना लीजिए, फिर ही उसको बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे मन का, जो मन और बुद्धि से आपकी महिमा का मैं वर्णन तो कर रहा हूँ, वाणी से आपके रूप का वर्णन करूंगा, पर आपके जो गुण है, निर्गुण गुण है, ये कैसा है? शक्कर का एक टुकड़ा है, तो उसका जो रूप है उसका वर्णन मैं वाणी से कर सकूंगी कि भाई ऐसा है, सफेद रंग है, ऐसा ऐसा है, इतनी जगह रोक रहा है, उसका वजन इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, ये टेबल पे रखा गया है, ये सब तो मैं बोल सकती हूँ। पर वो कैसा है, उसके अंदर भीतर कुछ और भी है क्या? शक्कर के भीतर ये रूप के अलावा और क्या है? मिठास है, तो मिठास दिख रही है? नहीं, मिठास दिख नहीं रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चखना पड़ेगा, उसको वाणी के ऊपर लाना पड़ेगा, जूठा करना पड़ेगा। जूठा करने के बाद क्या आएगा? झूठा करने के बाद जवाब क्या आएगा कि ये मीठा है? ऐसे हे परमात्मा, मेरी गलती तो हो ही गई है, वाणी से नाम लेके मैंने झूठा कर दिया आपके नाम को। ये वाणी से भी लिया नहीं जा सकता नाम, तो भी मैंने लेने की दृष्टता चेष्टता की, पर मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि शक्कर के निर्गुण गुण को जानने के लिए मुझे उसे झूठा करना ही पड़ता है, तो ही मैं मीठा ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे हे परमात्मा, वाणी से आपका नाम लेके, मन और बुद्धि से ये नाम लेने के बाद जो भी आपके निर्गुण निराकार जो विशेषण जो गुण थे वो मेरे भीतर जिस प्रकार आए, उसका मैंने वर्णन, निर्गुण का भी वर्णन मैंने किया है। इसलिए ये स्तुति का बहुत महत्व है, क्योंकि सगुण और निर्गुण को एक साथ प्रदर्शित किया है, एक ही प्रभु के लिए प्रदर्शित किया है। और ये जो परमात्मा मन और बुद्धि से मैंने जो निर्गुण तत्व का वर्णन किया है, उसमें से अज्ञान रूप मन को हर, आप हर इसलिए है कि हर में ये मन की जो मेरा जो मन है, मेरा जो संस्कार है सत्व रजस तमस, मेरे मन के जो संकल्प विकल्प आपके निर्गुण रूप को वर्णित करने में भी बीच में आ गए हो, उसको आप निकाल देना, और फिर जो रह जाएगा वो स्तुति आप स्वीकार कर लेना। बुद्धि से भी, जो भी बुद्धि से मैं जहां तक पहुंच सका, आप बुद्धि से पर है, मैं जहां तक पहुंच सका वहां तक मेरी बुद्धि गई, वो मेरी अज्ञान रूप बुद्धि को निकाल लेना, और जो भी बच गया वो स्तुति को आप ले लेना। ऐसा हर, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जिस दिन आप परमात्मा को कह सकेंगे कि हे परमात्मा, ये तेरा नाम मैं ले रहा हूँ, उसमें से ये अज्ञान रूप मन वाणी का विषय निकाल देना, और जो परम तत्व आप रह गए हैं, तदेको अवशिष्ट शिव केवलोहम, ये अवशिष्ट जो रह गया है हे परमात्मा, उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लेना। तब समझना कि आपने परमात्मा को स्वीकार किया, आप परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं। कुछ नहीं तो उसके साथ मन ही मन बातें कीजिए। कभी उसके साथ बात की है? हाँ, ऑर्डर ही किया है, पैर दुखता है, हे भगवान मिटा दो, आंख दुखती है, हे भगवान मिटा दो, ये हो गया, घर टूट गया, हे भगवान, ये क्या ऑर्डर? हाउ कैन यू ऑर्डर? और ऑर्डर किसको कर सकते हैं? जिसके साथ इंटीमेसी हो, जिसके साथ फ्रेंडशिप हो। कभी उठ के पूछा है हाउ आर यू? हाँ, परमात्मा को कभी मन से भी पूछा है? नहीं, उसको प्रेम ही नहीं किया। परमात्मा को आस्तिक के बुद्धि से प्रेम करो। देखिए, तकलीफ होती है तब वही परमात्मा, वही उनके सगुण साकार रूप के बाद आप नहीं सोचेंगे तो भी जाते तो है ही, अनजाने में भी चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं, मदद मांगते हैं, और वो गलत भी नहीं है। तो अनजाने में उनके पास अगर आप दौड़ जाते हैं तो जानते हुए जाइए ना। शर्म क्यों लगती है? ये संकोच क्यों है? ये संकोच तोड़ दीजिए। ये शर्म, परमात्मा के बारे में संकोच और शर्म तोड़ दीजिए, तो ही परमात्मा को आप कह सकेंगे कि मेरी वाणी से अनुरुत निकाल दीजिए। हाँ, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये असत जो वाणी में, मन में, बुद्धि में रह गया है, उनको आप निकाल दीजिए। तो यहाँ मेरी स्तुति निर्दोष है ऐसा परमात्मा को पहले से ही उन्होंने बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका वर्णन, हमेशा जितना वर्णन करूं उससे आप अधिक ही है। देखिए, व्यवहार में भी मैं मिठास का जितना वर्णन करूं वो कम ही है ना। आपको तृप्ति कब होगी? हाँ, जब वो मिठास आपके भीतर जाएगी तभी आपको तृप्ति होगी। वर्णन तो वैसे भी अधूरा रहेगा, तो व्यावहारिक शक्कर का वर्णन भी अधूरा है, तो ये परमात्मा का वर्णन तो अधूरा ही रहेगा। वो मुझे पता भी है कि अधूरा रहेगा, तो भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो वर्णन करना अच्छा है। इससे क्या हो रहा है? देखिए, सूक्ष्मतया क्या हो रहा है, बहुत बड़ी घटना घट रही है। ये भगवदाकार वृत्ति तैयार हो रही है, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जिसमें आप वो तत्वमसी का उपदेश है वो धारण करके रख सकते हैं। यही एक पात्र है, यही एक शुद्ध भगवदाकार वृत्ति का पात्र है, जिसमें ये परमात्मा ठहर सकता है, क्योंकि वो अति शुभ्र, अति शुद्ध है। आप यहाँ आए और आपके कुर्सी के ऊपर कल जो कुछ पूजा हुई होगी, किसी ने प्रसाद या शक्कर के 2-3 दाने पड़े होंगे, तो आप वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? साफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताइए। भाई, ये तो मंदिर है, ये मंदिर ही है, तो मंदिर में तो कहाँ भी बैठा जाता है, साफ करने की क्या जरूर है? नहीं, हम तो साफ करके बैठेंगे। देखो, ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संगात है, मृत प्राय शंकराचार्य जी ने इतना अच्छा बताया विवेक चूड़ामणि में, सुनने को तो अच्छा नहीं लगेगा कि ताजा मरा हुआ मर्दा है ये शरीर, ताजा ताजा एकदम फ्रेश मरा हुआ, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर ये हकीकत स्वीकारनी पड़ेगी। तो ये ताजे मर्दे को भी बिठाने के लिए साफ सफाई करते हैं, तो वो अति शुद्ध परमात्मा वो क्या अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मल हाँ ये इतनी अशुद्धियों के सीट पे बैठ जाएगा आके हृदय में, लगता है बैठेगा? हाँ हम चेयर को साफ कर करके बिठाते हैं तो आप अपने अंतकरण को शुद्ध कब करेंगे, कैसे बैठेगा वो अंदर? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठेगा। इट इज एन इंसल्ट टू इनवाइट लॉर्ड, उनको बुलाने की जल्दी मत करना, क्योंकि यो वेद नहीं तम गुहायाम, वो तो आके है ही पर अपने स्वरूप को वो बताता नहीं है। अहम अस्मि प्रत्यय से वो प्रगटीकरण नहीं करते हैं अपने आप को। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो आसन है वो स्वच्छ नहीं है। आप किसी के घर में जाते हैं, आपको अगर शुद्ध आसन बैठने के लिए नहीं दिया गया या जानबूझ के गंदा आसन दिया गया, गंदा आपका आदर सत्कार नहीं किया, ठीक जगह पे आपको अपने स्टेटस के मुताबिक बिठाया नहीं तो क्या होगा? वोंट यू फील इंसल्टेड? हाँ हमको बुरा लगेगा, हम वापस वहां नहीं जाएंगे। हम तो निर्णय लेके बैठ जाते हैं कि हम वापस ये घर में जाएंगे नहीं। परमात्मा तो इतना भी नहीं कर सकता है, और यही बात का हम डिसएडवांटेज लेते हैं उनका। अशुद्धि तो पूरे पूरी है, परमात्मा को बुलाया कि मेरा ये काम कर दे, कभी कभी मन हुआ प्रार्थना कर ली, मन हुआ सत्संग कर लिया, पर ठीक जगह ठीक आसन उनको नहीं दिया, तो ये परमात्मा इतना करुणामय दयालु है कि ये ऐसा भी नहीं कहता है कि मुझे ठीक बिठाने को नहीं मिला तो मैं चला जाता हूं, नहीं। वो ऐसे ही अंतस्थित अहम प्रत्यय से आपको सत्ता और स्फूर्ति देते ही रहते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इतनी धीरज वो परमात्मा रख सकता है। अब तो सोचिए कि उसे निज आसन पे बिठाना, ये परमात्मा को बिठाना यानी क्या कि परमात्मा को अहम ब्रह्मास्मि अहम वृत्ति से इतना व्यावृत्त होने देना, इतना अभिव्यक्त होने देना कि आप कुछ भी वाणी बोले कुछ भी देखे तो उसमें अदृश्य परमात्मा दिखाई दे, उसको अभिव्यक्त होने देना। ये आंख उसने दी है तो परमात्मा को अंदर बोलिए ये शरणागति क्या है, ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पण करना क्या है, शरणागति क्या है कि ये आंख तूने दी है, मैंने ठीक ठीक सब देख लिया, नाउ इट इज फॉर यू। आप जितना जल्दी सके दे सके उसको आंख दे देना, यानी आंख दे देना यानी क्या कि ये आंखें अब तेरे लिए है, तुझे जो देखना है वो देख ले, ये मुख तेरे लिए है, जो बोलना है वो बोलना, जो खाना है वो खाना है परमात्मा, जो कान तुझे दे दिए अब मैं जिद नहीं करूंगा कि यही सुनना है यही खाना है यही देखना है यही पहनना है, इट इज योर्स यूटिलाइज इट। ये शरणागति है तो हृदय आसन शुद्ध होगा, और ऐसे हृदय आसन शुद्ध करने के लिए ये भक्ति है, स्तोत्र है, अनेकविध स्तुतियां है, ऐसे ये न कहने प्रकारेण सत्संग करके ये प्रयत्न करके हम परमात्मा के प्रति जितने निकट हो सके, मनुष्य शरीर एक ही ऐसा है उसमें हम जा सकते हैं, इसीलिए इसका सदुपयोग करके एक एक क्षण का उपयोग करके वो परमात्मा के प्रति हमारी निष्प्रतिदिन गति हो, ऐसी ही परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कल हम फिर से मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।